पिछले कई सौ सालों में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के एक छोटे से रीजन में कई सारे शिप्स, एरोप्लेन्स और बहुत से लोग अचानक से गायब हो चुके हैं। इस रीजन को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, सार्कासो ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक ओशियन, सी ऑफ डूम, या फिर सबसे फेमस नाम द बर्म्यूडा ट्रायंगल। बहुत सारी कहानियाँ, साइंटिफिक थ्योरीज हैं जो इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है। बहुत सारे बुक्स, मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो प्रूव करने में लगी है कि ये वाकई में एक मिस्टीरियस जगह है जो समझ से परे है। इस एपिसोड में जानेंगे कि क्या ये एरिया इतना खतरनाक और मिस्टीरियस है, क्या वाकई में बर्म्यूडा ट्रायंगल समझ से परे है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट रीजन में फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्म्यूडा के बीच ट्रायंगल शेप में ये रीजन है, जिसका एरिया अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग अलग अलग बताया जाता है। इस मिस्टीरियस प्लेस का सबसे पहला रिकॉर्ड बताया जाता है 13 सितंबर 1492 से, जब क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जहाज से इस एरिया से गुजर रहे थे और उन्होंने अपने कंपास में कुछ अजीब सा नोटिस किया और वहां से कुछ दूर एक चमकता हुआ लाइट दिखा जो ऊपर नीचे कर रहा था। इसके बाद फिर 1824 से भी कई घटनाएं बताई जाती है, जिसमें सीप समेत तो लोग भी गायब हो गए और उनका कभी पता नहीं चला। फिर 1881 का एक फेमस इंसिडेंट बताया जाता है। एलेन ऑस्टिन नाम का जहाज लंदन से न्यूयॉर्क बर्म्यूडा ट्रायंगल के रास्ते से जा रहा था। फिर सीप के कैप्टन और बाकी लोगों को एक सीप दिखता है जिसमें कोई इंसान नहीं था, मगर सीप में सारा सामान सही सलामत रखा हुआ था। इस पर बहुत से रिकॉर्ड्स हैं, मगर एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीप के क्रू मेंबर्स ने उस सीप को साथ ले जाने का डिसीजन लिया। फिर एक भयानक तूफान ने दोनों सिप को अलग कर दिया और फिर दूसरे दिन मिलने पर उस सिप पर फिर से कोई लोग नहीं थे, जो कि सुनने में बहुत ही रहस्यमय लगता है, मगर आज तक इसका कोई सबूत नहीं है कि यह कहानी सच है। 20वीं शताब्दी में बर्म्यूडा ट्रायंगल एक मिस्टीरियस जगह के नाम से फेमस होने लगा, जब फरवरी 1918 में यूएस नेवी की एक सबसे बड़ी सिप यूएसएस साइक्लोप्स 300 लोगों के साथ सेल्वाडोर ब्राज़ील से बाल्टीमोर मैरीलैंड जा रहा था और फिर वो सिप कभी बाल्टीमोर पहुंचा ही नहीं। ना ही कोई SOS सिग्नल भेजा गया था और आज तक कोई पार्ट्स भी नहीं मिला, मानो किसी मॉन्स्टर ने पूरा सिप को निगल लिया था। इस इंसिडेंट के बाद US नेवी के ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया कि नेवी के रिकॉर्ड्स में यह आज तक का सबसे मिस्टीरियस घटना है। इसके बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएँ सामने आती है। 1941 में USS प्रोटियस जो 58 पैसेंजर्स और कुछ मेटल्स के साथ अचानक से गायब हो जाता है। उसके एक महीने बाद फिर एक नेवी सिप 61 लोगों के साथ गायब हो जाता है। ये एरिया और भी सस्पिशियस और मिस्टीरियस बन गया जब 1945 में वर्ल्ड वार II के दौरान कुछ फाइटर प्लेन्स ग्रैंड बहामास आइलैंड के ऊपर ट्रेनिंग मिशन कर रहे थे और उन्हें वापस फ्लोरिडा के एयरबेस में जाना था, लेकिन वो प्लेन्स कभी वापस लौटे ही नहीं। 1941 में भी 25 लोग और 6 क्रू गायब हो जाती है। अगले ही साल सेम मॉडल की और एक प्लेन गायब हो जाती है। 1970 में एक पायलट ब्रूस गर्नॉन यहाँ से लौट कर आए थे और उन्होंने बताया कि वहाँ क्या हुआ था। बताते हैं कि जब वो बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे तब अचानक मौसम बिगड़ गया और प्लेन गहरे काले बादल से घिर गया। ये काला बादल खत्म ही नहीं हो रहा था, ना ही कोई नेविगेशन टूल काम कर रहा था, प्लेन का स्पीड भी बहुत बढ़ गया था और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 3 मिनट के बाद वो बाहर निकलते हैं और प्लेन को लैंड कराते हैं। फिर पता चलता है कि प्लेन 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, जो किसी भी पैसेंजर प्लेन के लिए पॉसिबल नहीं है। फिर ब्रूस अपने इस पूरे एक्सपीरियंस पे एक बुक लिखते हैं, बियॉन्ड द बर्म्यूडा ट्रायंगल। 1964 में पहली बार विंसेंट गैडिस ने अर्गोसी नाम के मैगजीन में इस एरिया को बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम दिया और लिखा द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल, और फिर तब से ये इसी नाम से फेमस हो गया, जिसमें अब तक के सारे इंसिडेंट्स के बारे में लिख कर समराइज किया गया था और मिस्टीरियस बोला गया बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए। फिर 10 साल बाद 1974 में एक बुक पब्लिश होता है, द बर्म्यूडा ट्रायंगल बाय चार्ल्स बेल्डिट, जिसमें ऑथर ने डीप में जाकर सब एक्सप्लेन करने की कोशिश की और बताया कि सच में यहाँ कुछ है, यहाँ कोई बैड वेदर की वजह से नहीं, बल्कि सच में ये रीजन एक मिस्टीरियस है जो हमें दूसरी जगह ले जाता है। और भी कई सारी थ्योरीज दी और बोला यहाँ कोई पुरानी सिविलाइजेशन थी जिसकी शक्ति इस एरिया को अफेक्ट कर रही है। और ऐसे ही साइंटिफिक टर्म्स वर्म होल्स स्पेस टाइम का यूज़ करके मिस्टीरियस बनाने का कोशिश किया गया। वर्ल्ड वाइड ये बुक 14 मिलियन कॉपी सेल हुआ है और 22 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। आने वाले सालों में बहुत सारी बुक्स लिखी गई, मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, जिससे पूरी दुनिया में यह एक मिस्टीरियस और जादुई जगह बन गया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में घटने वाली घटनाओं के पीछे कई सारी साइंटिफिक थ्योरीज भी बताई जाती है। एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल में जियोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस होता है, जिस कारण से वहाँ पे कंपास या कोई नेविगेशन टूल काम करना बंद कर देता है। हमें पता है कि अर्थ का नॉर्थ पोल होता है, लेकिन एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी होता है, और ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। और कंपास हमें मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दिखाता है। दोनों पोल के बीच कुछ डिग्री का फर्क होता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ कंपास से देखने पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एक ही पॉइंट पर दिखता है, और ऐसी जगहों को एगोनिक लाइंस कहते हैं। एगोनिक लाइंस टाइम के साथ साथ बदलती रहती है, मगर 200-300 सालों में ये बरमूडा ट्रायंगल की रीजन में ही है, इसी कारण से कंपास सही से काम नहीं करता। दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि बरमूडा ट्रायंगल का जो एरिया है ये सैलो एरिया है, यहाँ पर पानी उतना गहरा नहीं है, जिस वजह से कई सीप अटक जाते हैं। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पानी के नीचे चट्टान या मिट्टी का ढेर मौजूद होता है, जो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता, और सीप इन जगहों पर अटक जाती है। लेकिन यहाँ एरोप्लेन्स भी गायब होते हैं, जिसके पीछे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है हरिकेन्स का। बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में हाई इंटेंसिटी हरिकेन्स आते हैं, जिस वजह से कभी कभी 100 फीट ऊंचा वेव बन जाता है। और एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है मीथेन ब्लोआउट्स का। कुछ ऐसे एरिया हैं समंदर के अंदर जहां मीथेन हाइड्रेट्स का भंडार पाया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि जब मीथेन बबल्स पानी में फॉर्म होते हैं तो पानी का डेंसिटी घट जाता है। और हमें पता है कि सीप को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसका डेंसिटी पानी से कम हो और पानी में तैर सके। बताया जाता है कि समंदर के नीचे वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जिससे मीथेन बबल्स का फॉर्मेशन होता है, और अगर इस एरिया में कोई सीप आ जाए तो वो लो डेंसिटी के कारण डूब जाता है। मीथेन ब्लूआउट का ये एक्सप्लेनेशन सुनने में इंटरेस्टिंग तो लगता है, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है आज तक कि बरमूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले सीप मीथेन ब्लूआउट के कारण हुए हैं। तो जियोमैग्नेटिज्म, मीथेन ब्लूआउट, हाई इंटेंसिटी हरिकेन से पता चलता है कि ये एरिया सीप्स, बोट्स, प्लेन्स के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन सवाल अब ये भी है कि क्या दुनिया में बरमूडा ट्रायंगल इकलौता जगह है जहां ऐसी घटनाएं घटती है? नहीं। हाँ, ये बात सच है कि कई बड़ी बड़ी सीप्स और एरोप्लेन्स बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो चुके हैं, लेकिन दुनिया में बहुत से और भी एरियाज हैं जहां बड़े बड़े सीप्स और प्लेन्स गायब हो चुके हैं, जिनके बारे में हमने नहीं सुना है, क्योंकि हमें बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ही ज़्यादा बताया जाता है और हमें बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर ही ज़्यादा मूवीज़ और बुक्स देखने मिलेंगे। जर्नलिस्ट लैरी कुस ने एक किताब लिखी, द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड, जिसमें उन्होंने बताया कि पहले ऐसी कुछ घटनाएं जरूर घटी थी, लेकिन जैसे जैसे मिस्ट्री फेमस होने लगा, कुछ लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी। अमेरिका की नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में कई ऐसी रीजन है जहां बरमूडा ट्रायंगल से ज़्यादा घटनाएं घटती हैं। अमेरिकन कोस्ट गार्ड का कहना है कि यह हैवीली ट्रैफिक एरिया है, इसलिए यहां घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। WWF के 2013 के स्टडी के अकॉर्डिंग बरमूडा ट्रायंगल वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट डेंजरस रीजन में भी नहीं आता है। तो इन सारी बातों को जानने के बाद हमें पता चलता है कि बरमूडा ट्रायंगल कोई मिस्टीरियस जगह नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जहां इस तरह की घटनाएं घटती रहती है।